नमस्कार, हिंदी साहित्य सभा किस्सा गोई की आज की कड़ी में पेश करती है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला में रचित कहानी पर आधारित छुट्टी।
चौदह साल का फुटीक अपने गांव में नदी के किनारे अकेला बैठा किसी गहन सोच में डूबा हुआ था। तभी एक नाव किनारे पर आकर रुकती है और उसमें से एक सज्जन उतरकर फुटीक से पूछते हैं, अरे भाई, ये चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं?
मुझे नहीं पता, फुटीक ने गुस्से में कहा और पहले की तरह उसी जगह पर बैठा रहा।
लेकिन इतने में घर से एक नौकर आकर बोला, फुटीक, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। फुटीक ने हिलने तक से इनकार कर दिया। इस पर वो फुटीक को बुरी तरह से पीटते हुए घर ले आया। इधर फुटीक को देखते ही उसकी माँ गुस्से में बोली, तुमने माखून पर फिर हाथ उठाया? नहीं तो, किसने कहा आपसे? झूठ भी बोलने लगे हो आजकल। आप माखून से पूछ ले, मैंने नहीं मारा है उसे। इस पर माखून ने असहमति जताई। अब तक फुटीक का धैर्य जवाब दे चुका था। ये अन्याय उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने जोर से माखून को एक चाटा मारा। ये लो और ये दूसरा झूठ बोलने के लिए। इतने में माँ अपने आपे से बाहर हो गई और फुटीक को पीटने लगी। क्या हुआ है, क्यों बच्चे को मार रही हो? ये वही सज्जन थे जिन्होंने कुछ वक्त पहले फुटीक से रास्ता पूछा था। फुटीक की माँ ने पैर छूकर अपने बड़े भाई को प्रणाम किया। फुटीक के मामा उसकी माँ की शादी होते ही घर छोड़कर बंबई में अपना व्यापार जमाने चले गए थे। जब फुटीक के पिता का देहांत हुआ तब भी बिशंभर वहीं थे। कुछ दिनों पहले वो कलकत्ता वापस आए और आते ही अपनी बहन के बारे में लोगों से पता किया और फौरन उनसे मिलने चले आए। अगले कुछ दिन बहुत आनंदपूर्वक बीते। एक रोज बिशंभर ने अपनी बहन से फुटीक और माखून की पढ़ाई के बारे में पूछा। उनकी बहन ने उन्हें बताया कि फुटीक हमेशा बदमाशियों में लगा रहता है, कुछ कहो तो सुनता भी नहीं है और बिना वजह माखून को परेशान करता है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़के से। यह सुनकर बिशंभर बोले, अगर ऐसी बात है तो तुम फुटीक को मेरे साथ कलकत्ते भेज दो, वहाँ अपने भाइयों के साथ उसका मन भी लगेगा और पढ़ाई भी हो जाएगी। माँ और फुटीक दोनों इस बात के लिए झट से मान गए। फुटीक ने झटपट अपना सामान बांध लिया और अंततः वो समय भी आ गया जब फुटीक कलकत्ते के लिए निकल पड़ा। जाने से पहले उसने छोटे भाई माखून के लिए एक वसीयत लिखी जिसके अनुसार उसका मछली पकड़ने का कांटा, उसकी बड़ी पतंग और उसके खेलने वाले कंचे सब अब माखून की संपत्ति थे और जाते वक्त वो माखून की प्रति उसकी उदारता देखने लायक थी। जब वो कलकत्ता पहुँचे तब फुटीक का पहली बार अपनी मामी से सामना हुआ, जो अपने परिवार में हुए इस गैर जरूरी इजाफे से कतई खुश नहीं थी। उनके लिए तो अपने तीन लड़कों को संभालना ही जी का जंजाल हुआ जा रहा था और इन सबके बीच एक 14 साल का देहाती लड़का उनकी बर्दाश्त के एकदम बाहर था। वैसे भी इस दुनिया में एक 14 साल के लड़के से बड़ी कोई मुसीबत ही नहीं है, और फिर वो है भी ऐसी उम्र में जब हर दूसरे रोज कपड़े छोटे पड़ जाते हैं, आवाज भद्दी हो जाती है और चेहरा कुरूप। हालांकि यही वो उम्र भी है जब इस छोटे बच्चे के दिल में सबसे ज्यादा भूख होती है स्नेह की, वात्सल्य की। आप इनसे एक दफे मोहब्बत से बात कर लें तो ये आपके नौकर बनने को तैयार हो जाएंगे, पर इनसे स्नेह जतलाने का साहस कोई नहीं करता क्योंकि बिना मतलब के लाड़ प्यार से तो बच्चे बिगड़ जाते हैं ना। उस पर चीखने चिल्लाने के दौरान वो सड़क का ऐसा आवारा कुत्ता बन जाता है जिसने अपने मालिक को ही खो दिया हो। एक 14 साल के लड़के के लिए उसका घर एकमात्र स्वर्ग होता है। अब ऐसी उम्र में एक अनजान घर में अनजान लोगों के साथ रहना एक तरह से फुटीक का शोषण ही था। उपेक्षा के उस माहौल में फुटीक को इतनी घुटन होने लगी कि उसे अब सांस भी मुश्किल से आती थी। उसे बस अब सुदूर विस्तृत खेतों में दौड़ लगा देनी थी और जी भर के खुली हवा में सांस लेनी थी, पर कलकत्ता जैसे व्यस्त शहर में उसे वो खेत कहाँ मिलते। उसके चारों तरफ तो बस ऊंची दीवारें थीं और घर थे। वो अब तकरीबन हर रात को अपने गांव वाले घर में जाने के सपने देखता। उसे उन घास के मैदानों की याद आती जहाँ वो सारा दिन पतंगे उड़ाया करता। उसे वो नदी के किनारे याद आते जहाँ वो कभी कभी पूरा दिन गुनगुनाते और हंसते खिलखिलाते गुजार देता था, और वो नदी जहाँ वो किसी भी वक्त डुबकी लगा सकता था। उसे अपने दोस्त याद आते जिनका वो राजा हुआ करता था, पर इन सबसे ज़्यादा याद आती उसे अपनी वो सख्त मिजाज माँ, जिनके मन में फटीक के खिलाफ सिर्फ शिकायतें थीं। वो अपनी माँ के लिए दिल ही दिल में बिना किसी आवाज़ के रोता था। उसकी हालत बिल्कुल दिन ढलते वक्त अपनी माँ से अलग हो गए बछड़े के जैसी थी। इस प्यार की भावना ने उस घबराए हुए दुबले पतले जंगली और बदसूरत लड़के को चिंता में डाल दिया था। कोई ये समझ पाता, इससे पहले ही इस चिंता ने उसको अपना शिकार बना लिया। फटीक से ज़्यादा कमज़ोर बच्चा पूरे स्कूल में नहीं था। टीचर के किसी भी सवाल के जवाब में वो या तो शांत हो जाता या इधर उधर देखने लगता था। अपने ऊपर पड़ने वाली हर मार को वो किसी बोझा ढोने वाले गधे की तरह सह लेता। जिस वक्त स्कूल के बाकी बच्चे मैदान में खेल रहे होते, वो बस खिड़की से टकटकी लगाकर दूर घरों की छतों को देखता। अगर कभी उसे ऐसी किसी खुली छत पर बच्चे खेलते हुए दिख जाते तो उसका हृदय पीड़ा से भर उठता था। एक रोज उसने अपने भीतर का सारा साहस जमा करके अपने मामा से पूछ ही लिया, मामा मैं घर कब जा सकता हूँ? चले जाना, बस एक बार छुट्टियाँ हो जाएं, बिशंभर ने जवाब दिया। लेकिन छुट्टियाँ तो अब अक्टूबर में होनी थी और अभी काफ़ी लंबा समय उसे इंतज़ार में बिताना था। एक दिन स्कूल में फटीक ने अपनी किताब खो दी। यूं तो किताबों के साथ भी उसके लिए पाठ तैयार करने मुश्किल ही थे, पर अब तो असंभव सा हो गया था। हर रोज टीचर अपनी बेंच से उसे बड़ी निर्दयता से पीटा करते थे। उसकी हालत अब इतनी बुरी हो गई थी कि उसके ममेरे भाई भी उसे ताने मारते और बेइज्जत करते। अंत में अपनी मामी के पास जाकर उसने बताया कि उसकी किताब खो गई है। उसकी मामी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, बेवकूफ गांव के गवार, इतने बड़े परिवार के साथ महीने में 5 बार तुम्हें किताबें कहां से लाके दूं? उस रात फटीक घर वापस नहीं आया। अगली सुबह फटीक जब कहीं दिखाई नहीं पड़ा और आस पड़ोस में देखने से भी कुछ पता नहीं चला, रात भर बारिश होती रही और जो भी उसे ढूंढने गए वो खुद भी बुरी तरीके से भीग गए थे। तब अंत में बिशंभर को पुलिस से मदद लेनी पड़ी। शाम को पुलिस की गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी। बारिश अभी भी हो रही थी और सड़कों पर पानी भरा था। दो सिपाही फटीक को उठाकर लाए और बिशंभर के सामने रख दिया। फटीक सर से लेकर पांव तक पानी और कीचड़ में भीगा हुआ था। उसका चेहरा और आंखें बुखार से लाल हो रहे थे और शरीर कांप रहा था। बिशंभर अपने हाथों से उठाकर उसे घर के अंदर लाए। जब उनकी पत्नी ने फटीक को देखा तो कहा, क्या मुसीबत है ये लड़का, इससे अच्छा तो तुम इसे इसके घर भेज देते। फटीक ने जब ये सुना तो रोते हुए कहा, मामा मैं घर ही जा रहा था पर वो लोग मुझे खींच के यहाँ वापस ले आए हैं। बुखार अब काफ़ी बढ़ चुका था। लगभग सारी रात फटीक बेहोश पड़ा रहा। बिशंभर डॉक्टर को लेके आए तो फटीक ने अपनी आँखें खोली और छत की तरफ देखते हुए बोला, मामा छुट्टियाँ हो गई क्या? बिशंभर ने अपनी आंखों से आंसू पोछे और फटीक के बुखार में तपते हुए हाथों को पकड़कर सारी रात बैठे रहे। वो सारी रात कुछ न कुछ बुदबुदाता रहा। पुराने दिन एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगे। दोस्तों के साथ खेलना, छोटे भाई माखन के साथ लड़ना और माँ कैसे उसे हर छोटी छोटी बात पर मारा करती थी। और एक पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। डॉक्टर ने बहुत चिंतित आवाज़ में बिशंभर से कहा, लड़के की हालत बिगड़ती जा रही है, आप उसकी माँ को बुलवा ले। फटीक बेचैन था, उसे अपने घर जाना था, अपनी माँ को देखना था। वो कभी रोता तो कभी चीख पड़ता, छुट्टी कब होगी मामा, मैं घर कब जाऊँगा? बीमारी ने उसे बेचैन कर दिया था। इसी समय फटीक की माँ दौड़ते हुए कमरे में आई और ज़ोर से रोने लगी। बिशंभर ने उन्हें शांत करने की कोशिश की तो वो फटीक के सिरहाने बैठ कर रोने लगी। फटीक मेरा बच्चा, मेरा राजा बेटा। फटीक एक पल के लिए शांत हो गया और अपने हाथ पैर पटकने बंद कर दिए। माँ, माँ फिर रोते हुए बोली, फटीक मेरा बच्चा, मेरा राजा बेटा। फिर फटीक ने बहुत धीरे से अपना सर दूसरी ओर कर लिया और बिना किसी को देखे बोला, माँ मेरी छुट्टी हो गई है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। और इतना कहकर उसने अपनी माँ की गोद में अपनी जान दे दी।